मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 17 अक्टूबर 2016 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए फिर से मैंने एक ऐसा विषय चुना है जो अभी कुछ ही लगभग 5-6 दिन पहले मेरी किसी से बातचीत जो हुई थी उस घटना पर आधारित है। मित्रों, घटना कुछ यूं है कि मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं जो दिल्ली में रहते हैं, यूं कह लीजिए कि मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं और उम्र में भी मुझसे लगभग 10-15 साल तो छोटे होंगे ही, और नो डाउट कि वो सरकारी नौकरी में हैं लेकिन काफी नीचे के पद पर उन्हें लगता है कि वो काम कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी पद का नीचा और ऊंचा होना नहीं मानता, लेकिन एक हायरार्की होती है, उसके तहत निश्चित रूप से वो नीचे की श्रेणी में आते हैं। लेकिन वो दिल्ली में रहे और उनके जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, उनके बड़े बेटे ने MBA किया दिल्ली से ही, और फिर वो अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनका बेटा काम कर रहा है और पिछले लगभग मैं समझता हूँ 5-6 साल से वो सर्विस में है। तो बट नेचुरल है कि एक बेटे की अच्छी नौकरी लग जाने के बाद परिवार की स्थिति में काफी एक सकारात्मक बदलाव आता है जो उनके यहां भी आया। हुआ कुछ यूं फ्रेंड्स कि उनके बेटे को बॉस्टन, जो अमेरिका की एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, वहां जाने का मौका मिला। जिस कंपनी में उनका बेटा काम कर रहा था उसे बॉस्टन कुछ दिनों के लिए भेजा जाने लगा। जब मुझे इस बात की सूचना मिली तो मैंने उनको बधाई दी, उनके बेटे को भी बधाई दी और हम लोगों की बातचीत होने लगी। मित्रों, हम दोनों के एक कॉमन IAS मित्र हैं, नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता। वो भी IAS हैं, उनकी पत्नी भी IAS हैं और दोनों के ही बच्चे, उनका एक बेटा है और एक बेटी है, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे हैं वो सब पढ़ने में। दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारवान हैं और उनकी जो बेटी है वो एक बहुत बड़ी कंपनी में अब सर्विस भी करने लगी है। तो मित्रों, जब इस बातें होने लगी तो जिनमें अपने परिचित जो छोटे भाई की तरह की जो बात बता रहा हूं, उन्होंने मुझे एक बात कही और खासकर स्पेशली यही बात मैं आप लोगों से आज करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, कल से बेटे से मिलने आने वाले रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। उसके मामा मामी आ रहे हैं, नाना नानी आ रहे हैं, चाचा चाची आ रहे हैं, ताऊ ताई आ रहे हैं, बुआ फूफा आ रहे हैं, मतलब घर परिवार के सभी बच्चे लोग बेटे से मिलने आ रहे हैं और इस बात के लिए मिलने आ रहे हैं कि जो बेटा है वो बॉस्टन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यानी कि ये उसकी पहली विदेश यात्रा है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए। फिर उन्होंने एक बड़ी संवेदनशील बातें कही जो मेरे हृदय को छू गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब, देखिए कि जो मैंने अपने IAS दोस्त का जो मैं भी की चर्चा कर रहा था, उन्हें भी वो भी जानते हैं उन्हें, बोले देखिए उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे रोज ही अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में आ जा रहे हैं। उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि आज भारत है तो कल अमेरिका है तो परसों फ्रांस है, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब कितने बड़े लोग हैं, कितने ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए लोग हैं, और हमारे यहां है कि एक बेटा कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा है तो आने वालों का तांता लगा हुआ है, उससे मिलने वालों की भीड़ लगी हुई और घर में उत्सव जैसा माहौल है। मित्रों, जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो उनकी आवाज में जो बुझापन था, उस बुझेपन को मैं महसूस कर सकता था। इससे पहले वो बड़े टटकी आवाज में बात कर रहे थे। उन्हें यह बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि बेटा बॉस्टन जा रहा है, यह बताते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग बेटे से मिलने के लिए आ रहे हैं और घर का बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही बात मेरे उस IAS मित्र की आई, IAS दंपत्ति की आई मैं कहूंगा, वैसे उनकी आवाज मध्यम पड़ गई। उनकी आवाज में एक किस्म की उदासी और सच पूछे तो कहीं ना कहीं अपने प्रति एक खीज सी भी मुझे महसूस होने लगी। उनकी अपने प्रति खींच कि देखो यार, मतलब लोग इतने बड़े बड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रोज आ जा रहे हैं और हम हैं कि बेटा कुछ दिनों के लिए जा रहा है और हमारे यहां इसको एक तरह से बड़ा भारी फेस्टिवल बना दिया गया है। मैंने उनको तुरंत समझाया, मैं चाहता था कि वह उनका वह जो उत्सव है वह बना रहे, उनके दिमाग में जो उत्सव की मानसिकता है, जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो न केवल बना ही रहे बल्कि और भी अधिक बढ़े, अदरवाइज तो फिर मेरा बात करना बेकार हो गया था। मैंने उनसे कहा कि देखो, सबसे बड़ी बात है, याद रखो कि आनंद कभी भी तुलनात्मक नहीं होता है, उत्सव कभी भी तुलनात्मक नहीं होता है, उत्सव बेहद ही निजी चीज है, बहुत ही निजी चीज है, वह केवल हम तक सीमित रहती है। और यदि हम अपनी चीजों के, अपने उत्सव की, अपने उपलब्धियों की, अपने आनंद की, अपनी खुशियों की तुलना दूसरों से करने लगेंगे तो जीवन में कोई भी एक अवसर ऐसा नहीं आएगा जब हम वास्तव में उत्सव मना सकेंगे, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप जितने भी ऊपर चलते चले जाइए, तुलना करने के लिए आपको आपसे ऊपर कोई ना कोई एक दूसरा शख्स मिल ही जाएगा, और वो शख्स ऐसा होगा जिसके बारे में आप जानते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जानते हो, चाहे अखबार और पत्रिकाओं के जरिए जानते हो, या किसी से सुनकर आप जान रहे हो। हमसे बड़ा कोई ना कोई है और उनके पास उत्सव मनाने का, खुशी मनाने का, आनंद का अनुभव करने का अपना उपाय है, अपना तरीका है, अपने पैमाने हैं। हर व्यक्ति के पास अपना पैमाना होता है, अपने आनंद को, अपने खुशी के माहौल को कभी भी जिंदगी में दूसरों के माहौल से मत तौलो। मित्रों, जैसे ही मैंने यह बात कही, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके आवाज की वो जो खनक थी जिसके लिए मैं सच में सुनने के लिए बेचैन हो गया था, वह वापस आ गई। उसने कहा कि हाँ भाई साहब, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहा, मैं तुमको समझाने के लिए ही नहीं कह रहा हूं, यही जीवन का सच है। सच पूछिए तो उत्सव तो वह होता है जो जीवन के हर पल को मनाने के लिए हम उत्सव में तब्दील कर लें। हमारी जिंदगी के जो छोटे छोटे मामले होते हैं, छोटी छोटी उपलब्धियां होती हैं, जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं, उन्हें भी हम फेस्टिवल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे दिमाग में वो उत्सवीय माहौल, वो उत्सवीय वातावरण मौजूद है तो। और मुझे लगता है मित्रों कि ऐसा किया भी जाना चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई महत्वपूर्ण या विपरीत स्थितियां नहीं है जो हमें हमारे इस उत्सव से हमें वंचित कर सके। मुझे तो ऐसा लगता है मित्रों कि जब हम सब सुबह सोकर उठते हैं तो क्या सच में जीवित उठ जाना, स्वस्थ उठ जाना, समय से उठ जाना हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? अन्यथा तो हम ये भी सुनते हैं कि वो सोया का सोया रह गया। हम अगर सुबह उठ रहे हैं, स्वस्थ उठ रहे हैं, तो ये आनंद का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे होने का प्रमाण है। हम भोजन कर रहे हैं, मजा आ रहा है, आज अपनी पसंद का खाना खाने को मिला है, तो क्या यह उत्सव की बात नहीं है? मैं अपने काम पर जा रहा हूं, चाहे मैं नौकरी पर जा रहा हूं या किसी अपने ही व्यवसाय पर जा रहा हूं, या मैं आज अभी आपसे ऑडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं, तो क्या यह मेरे लिए सच में उत्सव का कारण नहीं है? यदि मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूं, यदि मैं अपने पत्नी के साथ बैठा हुआ हूं, यदि मैं बाहर लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा हूं और साथ में चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा हूं, तो क्या यह मेरे लिए उत्सव नहीं है? एक किसान जब खेत में बीज बोता है और बीज बोने के कुछ दिनों के बाद जब उसे अपने उस चटियल मैदान में हरे हरे रंग के छोटे छोटे अंकुरित होते हुए पौधे से दिखाई पड़ते हैं, तो क्या यह सुख का कारण नहीं हो सकता? क्या यह उत्सव का कारण नहीं है? मित्रों, सच पूछिए तो ये सब हमारे लिए उत्सव के कारण है, खुशी मनाने के पल हैं, त्योहार के क्षण हैं। यदि हम मनाना चाहें तो हम इनका भी उत्सव मना सकते हैं, और यदि नहीं मनाना चाहें तो हम बड़ों बड़ों को किनारे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियों के भी, अरे इसमें क्या रखा है, अरे ये सब तो होता रहता है, अरे ये सब तो चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको देखो वो तो कितना बड़ा है, उसने तो ये हासिल कर लिया। अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से उत्सवों को खारिज कर देंगे। मुझे लगता है दोस्तों, कभी हम अपने लोक जीवन में जाकर देखें, गांव में जाकर के देखें, मैं तो वहां रहा हूं, रहा ही नहीं हूं बल्कि मैंने उनको जिया है, कैसे छोटी छोटी चीजों में वो बड़े बड़े उत्सव के अवसर ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े अवसर ढूंढते हैं वो अपने उत्सवों को मनाने के, और फिर मस्त हो जाते हैं। जिंदगी तो मुझे लगता है मित्रों यही है, और यदि जीवन में उत्सव नहीं है तो फिर जीवन नीरस भी है। तो मित्रों, मेरी जो उनसे बात हुई और उस बात का जो प्रभाव हुआ, मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बात को अपने आप सब प्रिय श्रोताओं तक भी पहुंचाना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी का आनंद ले सकें। क्योंकि मित्रों, हमारे यहां तो जीवन को आनंद ही कहा गया है, ब्रह्मानंद। अगर ब्रह्म आनंद है तो ब्रह्म के द्वारा हम सबकी उत्पत्ति हुई है, तो हम तो आनंद होंगे ही होंगे, और मुझे लगता है कि आनंदित होकर के ही हम एक तरीके से ब्रह्म की सच्ची उपासना भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल हम फिर किसी नए और अच्छे विषय पर बात करेंगे, और मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूं कि यदि आप किसी विषय विशेष पर चाहते हैं कि बात की जाए तो प्लीज मुझे मेल लिखें, मैं आपके विषयों पर हो सकता है कि आपसे बातचीत करूं। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह लाइफ मैनेजमेंट यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।